नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रॉयल एनफील्ड को यूरोपीय बाजार में वृद्धि की भारी संभावनाएं दिख रही हैं और इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी विभिन्न समुदायों के साथ संपर्क बढ़ाने सहित कई कदम उठा रही है। एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। आर्शर मोटर्स के तहत आने वाली फर्म दुनिया भर में बाइक बेचती है और मध्यम वजन वाले मोटरसाइकिल खंड में इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 8.5% है। रॉयल एनफील्ड के सीईओ बी गोविंद राजन ने यहां वार्षिक EICMA मोटर शो के मौके पर पीटीआई भाषा को बताया कि कंपनी भारतीय बाजार में मध्य वजन खंड में मिली सफलता को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दोहराना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूरोप में कंपनी की मौजूदा बाजार हिस्सेदारी लगभग 8.5% है और इसमें वृद्धि की बहुत बड़ी संभावना है। गोविंद राजन ने कहा, यह कहना मुश्किल है कि यहां से यह कितनी बढ़ेगी, लेकिन इतना तय है कि हिस्सेदारी साल दर साल बढ़ेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कॉपीराइट सोसाइटियों में महिलाओं और छोटे कलाकारों के लिए समान प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। उन्होंने यहां कॉपीराइट सोसाइटी और भारतीय संगीत उद्योग के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ आयोजित कॉपीराइट से जुड़े संबंधित पक्षों के बैठक में कहा कि ये सोसाइटी सभी संबंधित मुद्दों पर एक आम मंच पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि रचनात्मक उद्योग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी प्रासंगिक कॉपीराइट सोसाइटी के प्रतिनिधित्व वाली एक समिति काम करेगी। मंत्री ने बताया कि अनूप जलोटा समिति के संयोजक हैं और समिति 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को SMS या वॉइस कॉल के जरिए ग्राहकों को वाणिज्यिक संदेश भेजने वाले बैंकों और अन्य संस्थाओं से कहा कि वो DCA प्रणाली में शामिल होने के लिए तत्काल कदम उठाएं। दूरसंचार नियामक ने स्पैम और परेशान करने वाले संदेशों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया। डिजिटल सहमति अधिग्रहण प्रणाली के पास वाणिज्यिक और प्रचार संदेशों तथा कॉलों के लिए ग्राहकों की सहमति लेने और उसे बनाए रखने और रद्द करने की सुविधा है। स्पैम और परेशान करने वाले संदेशों पर कार्रवाई के तहत ट्राई ने इस साल जून में सभी पहुँच प्रदाताओं को एकीकृत मंच और प्रक्रिया बनाने के लिए डिजिटल सहमति अधिग्रहण सुविधा तैयार करने के निर्देश दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों और NBFC के लिए IT प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। IT प्रशासन में मुख्य रूप से रणनीतिक संरेखण, जोखिम प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता आपदा प्रबंधन शामिल हैं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक दिशा निर्देश 2023 जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। नवीनतम निर्देशों में कहा गया है कि बैंक और NBFC एक मजबूत IT सेवा प्रबंधन ढांचा तैयार करेंगी ताकि उनके पूरे IT परिवेश में परिचालन मामले में मजबूती सुनिश्चित की जा सके। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने मंगलवार को उत्पादक राज्यों के बिजली पर जल उपकर लेने का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार ने भी इसे अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी राज्य ये उपकर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अतार्किक उपकर के कारण पंजाब जैसे राज्यों को ऊंची दरों पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंह ने यहां बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन दिवस पर कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कई बार राज्यों को बताया है कि जल उपकर लगाना अवैध है। उन्होंने एक बयान में कहा कि इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्य इस पर शुल्क लगा रहे हैं। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को शुरुआती कारोबार में सकारात्मक रुख रहा, लेकिन एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेतों और विदेशी कोषों की सतत निकासी के बीच बाद में कारोबार सपाट रहा। BSE का 30 शेयर वाला सूचकांक शुरुआती कारोबार में 181.6 अंक चढ़कर 65,124 पर पहुंच गया। निफ्टी 49 अंक बढ़कर 19,455.70 पर रहा। सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स, विप्रो, मारुति, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लार्सन एंड टुब्रो और टाइटन के शेयर लाभ में रहे। वहीं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और NTPC के शेयरों को नुकसान हुआ। विमानन नियामक DGCA ने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़े मानदंडों का पालन न करने पर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियामक ने पिछले साल यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित करने पर नागरिक उड्डयन आवश्यकता के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। नागर विमानन महानिदेशालय ने मंगलवार को कहा कि वो मई 2023 से विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का निरीक्षण कर रहा है। DGCA ने एक बयान में कहा कि निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि एयर इंडिया संबंधित CAR प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। बयान के अनुसार ऐसे में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर CAR के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जवाब मांगा गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भारतीय समूह के प्रस्तावित 49% हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी दे दी है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जीवन बीमा कारोबार में शामिल है। सौदे के तहत भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सा इंडिया होल्डिंग से भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।